ओम शांति। आज के सवेरे के सत्र में आप सभी का स्वागत है। कल हम सब ने स्वयं के बारे में जाना, हम कौन है, हमारे गुण क्या है, जो कि हम आत्माओं के ओरिजिनल गुण है वह भी समझा। उन गुणों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने कर्म में लाने के लिए आज हम एक ऐसा परिचय प्राप्त करेंगे जो कि उन गुणों का अखंड अविनाशी स्रोत है। वह परम सत्य कौन है, जिसको हम जन्मों से ढूंढते आए, याद करते आए, लेकिन उसको जाना नहीं। उस परम सत्य के बारे में आज हम सुनेंगे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बेन के द्वारा। ओम शांति।
ओम शांति। राजयोग के द्वितीय सत्र में हम उस परम शक्ति, परम सत्य, परमात्मा के बारे में समझेंगे जिसके साथ हमें योग लगाना है। वैसे तो हरेक का बुद्धि योग कहीं न कहीं लगा हुआ ही होता है, व्यक्ति से, वैभव से, घटनाओं से, बातों से, धन से, साधन से, व्यसन से, कहीं न कहीं हरेक का बुद्धि योग अटैच होता ही है। लेकिन उसको योगी नहीं कहा जाता है। योगी उसे कहा जाता है जो अपने मन और बुद्धि अन्य सभी बातों से हटाकर एक परमात्मा से लगाए। इसलिए अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वो पिता परमात्मा कौन है, जिसको हम जन्म जन्मांतर से गॉड, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं। ये भी हम सभी जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहते हैं। और ये विवेक की बात है कि परम, सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं, अनेक नहीं हो सकते। ऑलमाइटी, फाइनल अथॉरिटी एक ही हो सकती है। तो जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में अभी तक भी स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में परमात्मा कौन है। यहां बैठे हुए आप सभी से भी अगर मैं पूछूं कि परमात्मा कौन है, तो क्या आप सबके तरफ से एक जवाब आएगा? नहीं। हरेक अपनी अपनी भावना, श्रद्धा, मान्यता अनुसार बताएंगे। जिसको श्री राम में भावना है वो कहेंगे श्री राम ही भगवान है, जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहेंगे श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं, चारों ओर प्रकृति का जो सौंदर्य फैला हुआ है लोग उसे ही भगवान की लीला समझते हैं। नेचर इज गॉड कहते हैं, प्रकृति ही परमात्मा है। कहीं अपने आप को भगवान समझते हैं, कहलाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। कोई सब में भगवान है ऐसी भावना रखते हैं। एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं। ये सिद्ध करता है कि परमात्मा को यथार्थ रूप से हम नहीं जानते हैं। बेशक हम भगवान को मानते हैं पर सही रूप से जानते नहीं हैं। हमारी बुद्धि में ईश्वर के बारे में जो कुछ ज्ञान है वो हमने या तो शास्त्रों से प्राप्त किया है या साधु संतों से प्राप्त किया है या हमें अपने परिवार के तरफ से जो मान्यताएं मिली हैं, मतलब मनुष्यात्माओं ने, फिर वो महात्मा धर्मात्मा जो भी हैं, मनुष्य आत्माओं ने अपने चिंतन साधना अपनी बुद्धि की शुद्धि के अनुसार ईश्वर के बारे में जो कुछ सोचा, समझा, अनुभव किया वो ही हम सबकी बुद्धि में है। इसलिए हरेक का अपना चिंतन रहा, अपना अनुभव रहा, अपनी मान्यता रही। इसलिए एक परमात्मा के बारे में अनेक मतें हो गई हैं। तो दो बातें हम अपनी बुद्धि में स्पष्ट कर लें कि परमात्मा का सही परिचय कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है। अगर मनुष्य आत्मा दे सकती थी तो हमें कब से प्राप्त हो जाना चाहिए? इसलिए कोई भी मनुष्यात्मा परमात्मा का सही परिचय नहीं दे सकती। अंडरस्टूड है। दूसरी बात हम ये स्पष्ट कर लें कि परमात्मा का सही परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य स्वयं सिद्ध होता है, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और अपना सत्य परिचय देते हैं, सद्ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सभी आत्माओं को परमात्मा के सत्य परिचय की जो परिभाषा सुनाई है, पहले वो परिभाषा मैं आपके सामने रखूंगी कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं, उनकी सच्ची व्याख्या क्या है, क्या नापदंड है जिससे हम वेरीफाई कर सके। तो पांच बातें मैं आपको बताऊंगी। परमात्मा का सही परिचय हम उसे कह सकते हैं जिसे विश्व के सभी धर्म मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति, समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व की आत्माओं के पिता है, इसलिए उनका यथार्थ परिचय हम उससे ही कह सकते हैं जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म मान्य करते हैं। कुछ माने उसे, दूसरे न माने, उनको परमात्मा नहीं कह सकते। इसलिए परमात्मा का यथार्थ परिचय सर्वमान्य होगा। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है, जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं, जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति के पांच तत्व से बना है, इसलिए जो जन्म लेते हैं प्रकृति के नियम उसको लागू हो जाते, प्रकृति के बंधन में बंध जाते। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकती, कर्म बंधन में हम बंधते हैं। देह संबंधों के बंधन में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, पोता है, भाई है, संबंध के बंधन में बंध जाते। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। इसलिए परमात्मा उनको कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंध के कर्म के प्रकृति के बंधन से न्यारे हैं। इसलिए हम उसे सदा मुक्त सदा स्वतंत्र कहते हैं। और देखिए भक्ति में हम सभी भगवान से मुक्ति मांगते रहते हैं। हे प्रभु हमें इस दुख से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें इस भव के फेरे से छुड़ाओ। हम भगवान से सदा मुक्ति मांगते रहे हैं। अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्ति दे सकेगा। इसलिए परमात्मा उनको कह सकते हैं जो सभी बंधनों से प्रभावों से सभी लेप क्षेप से न्यारे। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक स्वामी ना हो। परमात्मा से ऊपर और कोई आत्मा ही नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक बन सके। वो स्वयं ही सर्व के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। वो ही फाइनल सुप्रीम ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उनके ऊपर और कोई नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि वो पिताओं के पिता है, शिक्षकों के शिक्षक, गुरुओं के गुरु, पतियों के पति, नाथों के नाथ है। और चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो अपनी स्थिति में, गुणों में, कर्तव्यों में सदा परम है, जिनके गुण स्थिति कर्म बदलते रहते हों, समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर उसे परमात्मा नहीं कह सकते। ऐसे नहीं है कि आज परम है कल मध्यम हो जाएंगे, नहीं। आज प्यार के सागर है कल घृणा करेंगे, नहीं। कल प्रथम लेसन में आप सबने समझा है कि हम आत्माएं समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। ओरिजिनली हम सभी आत्माएं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शांत हैं, लेकिन आज हम सभी आत्माएं पतित, दुखी, अशांत बन गए हैं। आत्माओं के गुण, स्थिति, कर्म बदलते हैं, परमात्मा अपरिवर्तनशील, परम, सर्वोच्च, एक रस है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि ईश्वर को पहचानना आसान है क्योंकि वो एक रस है, अपरिवर्तनशील है, सदा प्यार का सागर है, सदा शिव है, सदा मुक्त है, सदा पावन है। और ही लोग कहते हैं कि मनुष्य को पहचानना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर घड़ी वो अपना रंग बदलता रहता है। परमात्मा सदा अपने गुणों में एक रस रहते हैं। और पांचवी बात, परमात्मा हम उसे कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता हो, जो सदा दाता हो। सर्वज्ञाता हो माना जो सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, संसार के आदि मध्यांत को, आलोक परलोक को जानते हैं, जो सारे ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जानते हैं, वो ही आकर के बताते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वे सर्वज्ञ है। मनुष्यात्माओं के लिए हम कहते हैं कि मनुष्यात्माएं अल्पज्ञ है, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम जानते हैं और भूल जाते, हम स्मृति विस्मृति को पाते रहते हैं। परमात्मा सदा जागती ज्योत है माना सदा ज्ञान का सागर है, संपूर्ण ज्ञान दाता है। और वे सदा दाता है, सदा दाता है, देते ही रहते हैं, देने के लिए ही आते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वे शांति दाता है, सुख दाता है, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता है, वे सदा दाता है। हम मनुष्यात्माएं सदा दाता नहीं है, है? हम मनुष्यात्माएं सदा दाता है नहीं, बेशक हम मनुष्य आत्माएं पहले दाता थी, देवता थे, देवी देवता हम कहते हैं, देवी देवता माना देने वाला। भारत की संस्कृति को देव संस्कृति कहते, दाताओं की संस्कृति, देने वाले। इसलिए आप देखिए हर देवी देवता के हाथ कैसे दिखाते हैं, हाँ, दाता देने वाले, हम उससे दाता कहते, वरदाता कहते। लेकिन आज हम मनुष्य आत्माएं दाता नहीं रहे, इसलिए आज हम देवता नहीं कहे जाते। आज हम क्या बन गए हैं, लेवता, देवता नहीं, लेवता लेने वाले, लेने वाले। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हम निस्वार्थ निष्काम भाव से कुछ भी नहीं कर पाते, हम लेवता बन गए। परमात्मा सदा दाता है, तो परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषाओं को बुद्धि में रखते हुए अब आप विवेक से सोचिए कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं। हम तो भावना से अनेकों को भगवान समझते रहे, लेकिन परमात्मा भावना का विषय नहीं है, परमात्मा सत्य है, सिर्फ मानने की बात नहीं है, वो सचमुच है, उसे यथार्थ रूप से जानना है। तो परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप बताइए कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते। क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं, कह सकते हैं? बहने इस तरफ सुन रहे हैं ना सभी, हाँ, कह सकते हैं? नहीं, कोई भी शरीरधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्य आत्माएं महात्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा देवात्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो मेहनत से प्राप्त कर लिया जाए। अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा तैयार नहीं होते जाते। इसलिए पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, कोई भी शरीरधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। जैसे एक बच्चा पिता समान रूपवान धनवान विद्वान बुद्धिवान गुणवान बलवान बन सकता है, लेकिन फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है और रचना रचना है। हम मनुष्यात्मा ये परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते हैं। इसलिए जो परमात्मा जैसे बने हमने उनको परमात्मा का अवतार समझ लिया। इसलिए कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात स्वतः ही स्पष्ट है कि जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, हम उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। बेशक वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। सत्यता तो ये है कि परमात्मा की याद से योग साधना से ही वे महान बने, उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही परिचय न जानने के कारण कोई थोड़ा भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, हम उनको ही भगवान समझने लग जाते, हम उनके ही चरण शरण में चले जाते हैं कि यही हमारा सुधार उधार करेंगे। लेकिन नहीं, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। तीसरी बात, जो भी धर्मात्माएं हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, इतिहास आप सब जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं। और हाँ देखो, इस्लाम के इब्राहिम है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक जी है, शंकराचार्य जी है, मोहम्मद पैगंबर है, अशु जरथुस्ट है, हजरत मूसा है, जिन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया, हम उनको धर्मात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। खैर, इन सभी धर्म स्थापकों ने स्वयं ही स्पष्ट कहा है कि हम तो गॉड के मैसेंजर हैं, हम खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं, इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो आगे चलकर अपने धर्म स्थापक में ही सीमित हो जाते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात बहुत ध्यान से निष्पक्ष भाव से हमें समझनी है कि जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते रहे हैं, हिंदू भाई बहने 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते, हम जिन भी देवी देवताओं को मानते रहे हैं, पूजा पाठ करते रहे हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री लक्ष्मी नारायण हैं, श्री राम सीता है, श्री राधे कृष्ण है, चाहे श्री अंबा दुर्गा सरस्वती है, श्री गणेश हनुमान महाकाली है, ये सब देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक ही है, देवी देवताएं अनेक हैं। और सभी धर्म वाले इन देवी देवताओं को नहीं मानते, ये सर्वमान्य नहीं है। आप और धर्म की बात छोड़िए, केवल हिंदू धर्म की भी हम बात करें तो भी क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं? नहीं मानते। आप यूपी बिहार साइड जाइए, राम के चुस्त भक्त कृष्ण को नहीं मानते, वैष्णव शिव को नहीं मानते। ये देवी देवताएं हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों को भी मान्य नहीं है। हम उनको विश्व के सभी धर्म की आत्माओं के पिता परमात्मा कैसे कह सकते? हम देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, इवन कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं सुनाते हैं। हम उनके माता पिता बंधु गुरु सखा बताते हैं। इन संबंधों का प्यार पालना लेते हुए दिखाते हैं। हर देवी देवता को श्रेष्ठ कर्म के लिए आते हुए दिखाते कि वे अवतरित हुए ही असुरों का संहार करने, आतताइयों को मुक्त करने और उनके श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हर देवी देवता को राजाई स्वर्गीय सुख भोगते हुए दिखाते। आप देखिए हर देवी देवता के मस्तक पर ताज दिखाते, उनको सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं जो राजाई के निशाने। माने स्वर्गीय सुख भोगते हुए दिखाते। तो जो भोगता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा किन विशेषणों से हम करते हैं कि वे अजन्मा हैं, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार, निरंजन, कर्मातीत हम उससे कहते हैं। तो अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा स्वरूप है जो विश्व के सभी धर्मों को मान्य है, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए हैं, स्वयं भू गया हुआ है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? स्वरूप कौन सा है? तो देखिए, मुंझने की बात नहीं है, परमात्मा को जानना समझना बिल्कुल सहज है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, परमात्मा अपने गुणों से, कर्तव्यों से परम, ऊंचे से ऊंचे। आज हम किसी को महात्मा कहते हैं, मान लो अपने को साधारण मनुष्य आत्मा कहते हैं, तो हम साधारण मनुष्य आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, और महात्मा माना इतनी मोटी आत्मा, ऐसा है क्या? हरेक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पर जो आत्मा गुण और कर्म से महान है उसको महात्मा कहते हैं। जो आत्माएं गुण और कर्म से दिव्य है उसे देवात्मा कहते। जो गुण और कर्म से पतित है उसे पापात्मा कहते हैं, पर है तो हरेक ज्योति बिंदु स्वरूप न। तो परमात्मा गुण और कर्म से परम, सुप्रीम, ऊंचे से ऊंचे है। रूप ज्योति बिंदु है, गुणों के सिंधु कहा जाता है। इसलिए ऐसे नहीं है कि हजारों सूर्यों से तेजोमय हम देख भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जिस पिता को देख ही ना सके वो पिता किस काम का है? तो रूप ज्योति बिंदु गुणों के सिद्ध। और आप देखिए, परमात्मा का ये ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को भी मान्य है। चित्र में बताया है ज्योति बिंदु परमात्मा को। हिंदू भाई बहने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। परमात्मा इतना बड़ा लिंगाकार नहीं है, ये उसका यादगार प्रतीक है। ज्योति बिंदु को भक्ति में पूजा के लिए जो प्रतीक बनाया गया वो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। इसलिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध, शिवलिंग शिवालय हर शहर गांव गली गली घर घर में पाए जाते हैं। इवन जंगलों में भी शिवालय पाए जाते हैं। रामेश्वर में श्री राम को शिव का पूजन करते हुए दिखाते हैं। वृंदावन गोपेश्वर में श्री कृष्ण को शिव के आगे नमन करते हुए दिखाते हैं। इवन श्री शंकर को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए तपस्या करते हुए दिखाते। श्री शंकर को कहते ही है तपस्वी जोगी, आगे शिवलिंग है और शंकर को ध्यान अवस्था तपस्या के स्थिति में बताते। सोचने की बात है कि श्री शंकर स्वयं भगवान है तो वो किसके ध्यान में बैठे। परमात्मा को तो कोई ध्यान तपस्या करने की जरूरत नहीं है। शंकर तपस्या करते हैं मीन्स उनके ऊपर भी कोई परम शक्ति है। उस परम शक्ति कल्याणकारी शक्ति को ही परमात्मा कहा जाता है। इसलिए भारत में अमरनाथ काशी विश्वनाथ सोमनाथ इवन नेपाल में पशुपतिनाथ देवों का देव त्रिदेव रचयता परमात्मा को कहते हैं। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, यही बात उर्दू भाषा में वे कहते हैं अल्लाह नूर है। और वे स्पष्ट कहते हैं कि परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं, नूरे इलाही कहते हैं। इलाही मीन्स अभौतिक अलौकिक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। जापान के बौद्धिस्ट एक स्टैंड पर शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं। उस प्रतीक को शांति दाता कहते हैं और उनसे ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष जो महायान पंथी बौद्धिस्ट है वो उनसे मेडिटेशन करते हैं। और आप देखिए गौतम बुद्ध को महावीर स्वामी को हम तपस्या करते हुए दिखाते हैं, तो वो किसके ध्यान तपस्या में बैठे, किससे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो है परम शक्ति परमात्मा। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज लाइट, इसलिए वो मोमबत्ती जलाकर ज्योत जगाकर प्रार्थना कर। गुरु नानक जी ने एक निराकार की ही महिमा की है, एक ओंकार निराकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूरत कहते हैं। तो विश्व के जितने भी मुख्यतः धर्म हैं, उनके जो धर्म स्थापक है, उन सब का मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक आकार नहीं है, इसलिए निराकार कहते हैं। उनका अपना दिव्य आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसलिए हम कहते हैं कि इन चर्म चक्षुओं से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। कोई दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हैं, दिव्य बुद्धि से समझते हैं। तो जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मेरे अविनाशी पिता पारलौकिक पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक मनुष्य का पिता कैसा होता है? मनुष्य जैसा। एक जानवर का पिता जानवर है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक संज्ञावाचक नाम नहीं। हमारे नाम शरीर से है ना? ये शरीर मेरा छूट जाए तो मेरा नाम भी समाप्त हो जाएगा ना? मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा ना? हमारे नाम शरीर से है। परमात्मा का नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक। उनका असली मूल स्वकथित नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी। शिव शब्द से कोई मतलब नहीं है, शिव मीन्स बेनिफैक्टर। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, थे हैं रहेंगे, सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी, सुंदर सदा पावन है। बाकी उनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। जितने शिवालय आप देखिए कितने नाम है। हम उससे ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर कहते हैं, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, भोलानाथ, उनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम हैं। हमें ये नामों की लिस्ट रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ईश्वर के गुण और कार्य से है, इसलिए हम उनके मूल नाम को याद रखते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से हम यहां शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स पिता, बाबा मीन्स पिता, कोई साधु बाबा की बात नहीं है, बाबा मीन्स पिता, शिव पिता, गॉड फादर हम कहते हैं ना, परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए कितनी खुशी और गर्व की बात है कि हम उस ऑलमाइटी परमात्मा के बच्चे, हरेक को है खुशी। आज कोई ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योगपति के बेटे को भी नशा होता है कि मेरे पिता ये है। हमें नशा है, हम भगवान के बच्चे हैं। नहीं है इसलिए हमें ये खुशी हो, गर्व हो, हम उस ऑलमाइटी के बच्चे हैं। तो हम कैसे होने चाहिए, सोचिए। परमात्मा के गुण और कर्तव्यों का कितनी महिमा हम गाते हैं, भक्ति में कहते हैं कि सारी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए, समुद्र की स्याही बना दिया जाए, हर वृक्ष की डाली की कलम बना दी जाए और स्वयं सरस्वती सदा लिखती रहे, तदपि हे इष तव गुणानाम पारम न याति, गाते हैं ना, तो भी हे परमात्मा तुम्हारे गुणों का कोई पार नहीं पा सकता है, माना इतनी तुम्हारी महिमा। हम कह सकते हैं परमात्मा सत्य ज्ञान सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर है। चित्र में बताया है कि वो एक इटर्नल फाउंटेन के समान है, जो निरंतर शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति बहाते ही रहते हैं। इसलिए परमात्मा को सागर सिंधु कहते हैं, दाता कहते हैं, अखुट भंडार कहते हैं। हम कह सकते हैं परमात्मा शांति के सागर है, शांति दाता है, दुख हरता, सुख करता, सदा पावन, पतित पावन, पवित्रता के सागर है, प्यार के सागर, दयालु, कृपालु, रहम दिल, कल्याणकारी कहते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्व के सदगति दाता, ऐसे सर्वगुण और सर्व शक्तियों के सागर परमात्मा के बच्चे हम भी कैसे होने चाहिए। तो ऐसे गुणों के सागर सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन सा कार्य करते हैं? वो कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू नहीं करते। कोई बीमार ठीक हो जाए, नापास पास हो जाए, खोट नफे में बदल जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, ये काम परमात्मा नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो छोटे जादूगर होते हैं वो छोटे छोटे जादू करते हैं, परमात्मा महान जादूगर है। वो कोई एक दो बात ठीक नहीं करते हैं, वो हमारे समूचे जीवन को ही श्रेष्ठ बना देते। हम कह सकते हैं परमात्मा पतितों को पावन बनाते हैं, ये उनका मूल कर्तव्य है कि जब हम सभी मनुष्यात्माएं, सारा विश्व जब विकारों के पंजे में फंस जाता है, देहभान में आकर विकारों के वश हो जाते, तब परमात्मा आकर सद्ज्ञान की शक्ति से हमें पतित से पावन बनाते हैं। न सिर्फ पावन बनाते हैं, वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम मनुष्यात्माएं पतितमो प्रधान असुर बन जाते हैं, परमात्मा हमें सच्चा मानव योगी और संपूर्ण मानव देवता बनाते हैं। और न सिर्फ हम मनुष्यात्माओं को देवता बनाते हैं, वे सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। प्रकृति, पशु पंछी, समस्त विश्व को सतयुगी, पावन, दैवी सृष्टि बना देते हैं। हम कह सकते हैं विश्व परिवर्तन विश्व पिता ही कर सकता है, और ये कार्य परमात्मा कैसे करते हैं? कोई छू मंत्र से नहीं करते, ऐसे नहीं है भगवान आएंगे और हम पावन हो जाएंगे। फिर तो लोग यही सोचेंगे कि भल पाप करते रहो, भगवान आएगा और पावन कर देगा। नहीं, दुनिया कर्म के सिद्धांत पर चलती, परमात्मा इस मनुष्य लोक में आकर कर्तव्य करते हैं, इसलिए वे करेंगे तो वे पाएंगे ना, हम करेंगे तो हम पाएंगे। इसलिए परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं ताकि हम परख सकें कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, समझ सकें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे हमें योग सिखाते हैं जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, ताकि जो करना चाहिए वो ही हम करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें। वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, विल पावर योग से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं परमात्मा सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पावन बनना है। हम आत्माओं की पवित्रता के बल से विश्व पावन बनता है। और ऐसा दिव्य कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, खुद आते हैं, इसलिए खुदा कहे जाते हैं। अगर वो आते ही ना हो, हम मनुष्य आत्माओं को मिलते ही ना हो, तो हम क्यों याद करते हैं? हमने कैसे जाना वो प्यार का सागर है, सुखदाता है? वो आते हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। तो कब आते हैं? परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? कब आते हैं? कौन सा श्लोक बोलते हैं? हरेक जानते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, तब तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। पर जब जब माना कब? जब जब माना कब? एग्जैक्ट कौन सा टाइम? कलियुग का अंत और सतयुग आदि का संधि काल, संगम युग जिसको कहा जाता। इसलिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधि काल, संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि कलयुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय, न कि सतयुग अंत, न कि त्रेता अंत, न कि द्वापर अंत, केवल कलयुग अंत को अति धर्म ग्लानी का समय कहा जाएगा। इसलिए परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे आते तो कलयुग क्यों आता? फिर उसने आकर क्या किया? हर कलयुग अंत के समय परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम कलयुगी पतित मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देकर पवित्र योगी बनाते हैं। जो पवित्र योगी आत्माएं आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनते हैं। चित्र में बताया है कलयुगी नर्क के साधारण नर नारी संगम युग में परमात्मा द्वारा रचे गए इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में, ये ज्ञान यज्ञ है, महायज्ञ है, जहां आप आए हैं, जो कलियुगी नर नारी इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में बुराइयां स्वाहा करते हैं, विकार अवगुण व्यसन दूषण कमजोरियां ज्ञान और योग से खत्म करते हैं, वे आने वाली सतयुगी स्वर्गीय दुनिया के देवी देवता बन सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड साइकिल में अभी जो समय चल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, जब स्वयं भगवान आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। फिर और कोई युग में परमात्मा नहीं आते हैं, और परमात्मा से ऊपर और कोई नहीं है जो दूसरे युग में आकर पावन बनाए। इसलिए अभी ही, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आप सबको यहां क्यों आमंत्रित किया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, स्वयं भगवान हमें पावन बना रहे हैं। ये कोई ब्रह्मा कुमारियों का या प्रजापिता ब्रह्मा का कार्य नहीं है, ये कार्य ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है, और अब वो अपना कार्य समेट रहा है, पूरा कर जाने वाला है। इसलिए अभी भी मार्जिन है, हम ज्ञान और योग की शक्ति से अपने को जितना पावन दिव्य बनाना चाहे हम बना सकते हैं। और लास्ट बात कि परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स जरूर कहीं और स्थान पर रहते हैं जहां से सृष्टि पर आते हैं। अगर वो यहां ही रहते हैं तो हम क्यों कहते हैं वो अवतरित होते हैं? आप यहां ही हाजिर है तो मैं ऐसे थोड़ी कहूंगी आप आने वाले, आप है ही है। अगर परमात्मा इस दुनिया में है ही है तो हम क्यों अवतरण की बात करते? तो परमात्मा कहां रहते हैं, उनका असली निवास स्थान कौन सा है? कल प्रथम लेसन में आपने समझा है कि हम आत्माएं भी इस दुनिया की निवासी नहीं है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है, ये वर्क प्लेस है, ये घर नहीं है। हम आत्माओं का असली घर परम धाम है, परमात्मा का भी असली निवास स्थान परम धाम है, जहां से कलियुग अंत संगम युग में सृष्टि पर आते हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए परमात्मा इस दुनिया का वासी नहीं है, वो भी परम धाम के निवासी। जो इस पांच तत्व की बनी हुई दुनिया से पार प्रकृति का छठवां तत्व है, अखंड लाल ज्योति तत्व जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, परमात्मा उस ब्रह्म लोक के निवासी। हम आत्माएं भी उसी ब्रह्म लोक परलोक परम धाम के निवासी। लौकिक दुनिया में भी बच्चे और बाप का घर एक ही होता है या अलग अलग होता है? असली घर तो एक ही होता है ना, बाद में अलग अलग होते हैं। असली घर तो एक ही होता है ना। तो हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर एक ही है, परम धाम, शांति धाम। जहां हम आत्माएं अपने ओरिजिनल ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप में स्थित है, शरीर प्रकृति के बंधन से मुक्त है, इसलिए मुक्ति धाम कहते हैं। वहां वाणी नहीं है, आवाज नहीं है, इसलिए निर्वाण धाम कहते हैं। परमात्मा भी उसी परम धाम के निवासी। इसलिए हम कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम कहते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं, हमारी नजर और बुद्धि कहां जाती है? ऊपर जाती है। हम कहते हैं ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला देख रहा है, कहते हैं ना एक दो। तो परमात्मा परम धाम निवासी, ये है परमात्मा का सही परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सभी आत्माओं को बताया है। ऐसे कल्याणकारी, सदा पावन, प्यार के सागर, सुखदाता हम आत्माओं के अविनाशी पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए? हाँ, कितना याद करना चाहिए? पर क्या हम इतना याद करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, शरीर भान में आ जाते हैं, इसलिए शरीर के मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं। इसलिए जितना आत्म भान में रहेंगे, क्यों फर्स्ट लेसन आत्मा का परिचय दिया गया? क्योंकि पहले सोल कॉन्शियस बनना है। जब हम सोल कॉन्शियस बनेंगे तो ऑटोमेटिक अविनाशी पिता परमात्मा की याद हमें सहज रहेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज हम यथार्थ परिचय से उस पिता को याद करेंगे। अब तक अपनी अपनी भावना अनुसार, अपनी अपनी मान्यता अनुसार भगवान को याद करते रहे हैं, जिसको भक्ति कहते। पर अब परमात्मा जो है, जैसा है, यथार्थ रूप से जान पहचान कर जहां रहता है वहां बुद्धि लगाकर उसे याद करना है, उसे योग कहते हैं। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी रखें। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग हाथ में रख के ना बैठे, साइड में रख दीजिए। एक दूसरे से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। आंखें स्वाभाविक खुली रहने दे, आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि चिंतन में लगाने की आवश्यकता है। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। आत्म स्मृति में स्थित रहते हुए हम मन बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में जाएंगे। शरीर से हम यहां बैठेंगे, मन बुद्धि से परम धाम में जाएंगे। उस परम ज्योति बिंदु शिव पिता को मन से विजुअलाइज करेंगे, ज्ञान नेत्र से देखेंगे और बुद्धि से, विवेक से, समझ पूर्वक और प्यार से हम उस पिता को याद करेंगे। मैं कमेंट्री देती जाऊंगी। आपको मुख से बोलना नहीं है, लेकिन जो विचार मैं दूं मन से फॉलो करना है। मैं आत्मा हूं। इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर शरीर धारण कर कर्म करती हूं। कर्म फल भोगती हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर परम धाम है। जो इस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार है, जहां अखंड लाल ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं आत्मा ब्रह्म लोक की निवासी हूं। मैं मन की आंख से ज्ञान नेत्र से उस परम ज्योति बिंदु स्वरूप पिता परमात्मा को देख रही हूं। मुझ आत्मा के अविनाशी पिता मुझे आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूं। आज आपका सत्य परिचय पाकर मेरा जीवन धन्य बन गया है। मेरे मन का अंधकार समाप्त हुआ है। मेरी बुद्धि रोशन हो गई है। मुझे अपार हर्ष है। जीवन का सही ठिकाना मैंने पा लिया है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। मेरी प्यारी शिव पिता अब मेरा यही लक्ष्य है जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार है, जो सद्ज्ञान आप हमें देते हैं वो सत्य ज्ञान सर्व दिव्य गुण सभी रूहानी शक्तियां मुझे जीवन में धारण करनी है। आप शांति के सागर हैं। आपके संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझे शांति दूत बनना है। स्वयं शांत रहना है। सर्वत्र शांति फैलानी है। क्योंकि मैं स्वयं शांत आत्मा हूं, शांति सागर की संतान, मास्टर शांति दाता। सुख के सागर, दुख हरता सुख करता, मीठे शिव बाबा। आपकी संतान मैं आत्मा भी, सुखदेव हूं। मुझे सबको सुख देना है। मैं आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान हूं। मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं। ज्योति हूं, शक्ति हूं। मैं आत्मा देह से न्यारी, चैतन्य प्यारी आत्मा हूं। ओम शांति।